या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फार, इन काफिरों से जंग करो जिनका इलाका तुम्हारे साथ मिलता है। वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, और इनके साथ तुम्हें सख्ती से पेश आना चाहिए। वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और जान लो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। यहां एक बार फिर ईमान की कॉल है, ईमान वालों कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया? उन लोगों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं। इससे क्या मतलब है और इसको हम कैसे देखेंगे? तो पहली बात तो यह है कि इससे काफिरों से लड़ने का एक असूल बताया गया, और वो असूल क्या है? अल अव्वलु फल अव्वल और अल अक्रबु फल अक्रब, कि जो लोग करीब के होते हैं पहले उनसे मामला किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लम पहले जजीरतुल अरब में रहे, उसको आबाद किया, मुशरिकीन से कताल किया। जब यहां से फारिग हुए तो मक्का, ताइफ, यमन, यमामा, हजर, खैबर, खजर मौत, यहां पे मुसलमानों को गलबा मिला। फिर अरब के सारे कबाइल जब फौज दर फौज दाखिल हो गए इस्लाम में, तो फिर अहले किताब से किताल हुआ, और 9 हिजरी में रूमियों से किताल के लिए तबूक चले गए, जो बिल्कुल जजीरा अरब से आगे का हिस्सा है। इसी के मुताबिक जब अल्लाह के नबी सल्लम की फिर वफात हो गई थी गज़वे के थोड़े अरसे के बाद, तो जब सहाबे कराम का दौर हुआ तो उन्होंने सबसे पहले फिर रोम के ईसाइयों के साथ मामला किया, क्रिश्चियंस के साथ, फिर उसके बाद ईरान की बात हुई। तो ये एक इंसान की सिक्योरिटी का असूल बता दिया कि अपने करीब के लोगों पे पहले काम करना चाहिए। जैसे तबलीग के लिए करीब के लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है बात करना, उनको बचाना बाद में दूर वालों की, इसी तरह मैदान जंग में भी ऐसा है। वरना क्यों, हिकमत क्या इसकी? बस आप देखिए कि कोई अपने करीब के दुश्मनों को छोड़ दे और दूर के दुश्मनों पर हमला करे या उनको कुछ बताए, तो क्या करीब वाले इसके ऊपर हमला ना कर देंगे? कितना बाहिकमत असूल है कि करीब के दुश्मनों को पहले दोस्तों में बदलो। तबलीग की बात हो तो करीब की बात करो। अब यहां चूंकि जिहाद और इल्म की बातें साथ साथ हो रही हैं, तो इसी असूल को हम इल्म के लिए भी लेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या असूल दिया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम वअहलीकुम नारा, पहले अपनी जान को आग से बचाओ और फिर अपने घर वालों को। हम क्या करते हैं, अपनी जान को तो बचाते नहीं, घर वालों को बचाना चाहते हैं, और फिर बातें सुन के शर्मिंदा होकर बैठ जाते हैं कि अभी तो अपना भी अमल नहीं था। तरतीब उलट दी ना हमने, कामों की तरतीब उलट दें तो वो काम फायदे की बजाय नुकसान वाले हो जाते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि ये जो बात है कि वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, तुम्हारे अंदर सख्ती पानी चाहिए उनको। ये कौन सी सख्ती है, किस सख्ती की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला? और करीब के लोग जो मुसलमानों के रास्ते में रुकावटें डालते थे, मुसलमानों को तंग करते थे, फितने पैदा करते थे, उनकी तरफ हमले करते थे, अब ऐसे लोगों को कि क्या प्यार मोहब्बत से बात करोगे? नहीं, जान तोड़ मुकाबला करो। अब नरमी का बर्ताव करने का वक्त नहीं रहा, बहुत हुज्जतें कायम हो गई, तो यहां कोई इनको टॉर्चर देना मुराद नहीं, बल्कि गिल्ज़ा का मतलब यह है कि तुम्हारे असूल और तुम्हारे दीन के जो मामलात हैं वो इतने वाज़े हों कि ये लोग फिर तुम्हारे बारे में कोई नरम गोशा ना रखें, या कोई ऐसा ना सोच लें कि तुम अपने आप को, अपने असूलों को और अपने नजरियात को हमारे नजरियात के हाथों फरोख कर दोगे। इससे क्या पता चलता है कि इस्लामी जिहाद बेसोचे समझे किए जाने वाला काम नहीं, प्लैंड काम है। अगर दूर वालों को पहले और पास वाले दुश्मनों को बाद में समझाया जाएगा, तो फिर वही कैफियत आ जाएगी जो अमूमन आज के दौर में मुसलमानों के साथ पेश आती है। अल्लाह के नबी सल्लम को जब तबलीग का हुक्म हुआ तो क्या कहा गया? सूरह शूरा में आता है कि वह अनजिर अशीरतकल अकरबीन, اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے۔ پہلی آیت کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک، اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کی بات تھی، اپنے علم کی بات تھی، تو پھر دوسروں کی۔ تو بات بڑی واضح ہے، اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے، صرف ایک ادب سکھا دیا گیا کہ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، متقین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تسلی ہے اس میں۔ کیونکہ جب کفار سے مقابلے کی بات آتی ہے، شدتوں کی بات آتی ہے، تو انسان کہتا ہے ہائے میرا کیا بنے گا، مجھے مار نہ دیں یا مجھے نقصان نہ دیں۔ تو کہا نہیں، اگر اللہ کی مدد لانی ہے تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، جتنا تمہارے اندر تقویٰ آتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں ملے گی۔ اور یہ جو سختی کی بات ہے، یہ صحابہ کرام کی صفت، سورۃ فتح کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 29 میں بھی آتی ہے، اشداؤ علی الکفار، کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ مائدہ آیت 54 میں ہے، اذلۃن علی المؤمنین، مومنوں کے لیے جھکے ہوئے، اعزۃن علی الکافرین، اور اہل ایمان کے لیے، کافروں کے لیے سخت ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو اللہ کے ہاں فتح دلواتی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر منافقین کی کچھ بات، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا، تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اس سورت سے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فزادتہم ایمانا، پس زیادہ کرتی ہے ان کو ایمان میں، وہم یستبشرون، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اس کے برعکس، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فزادتہم رجسن الى رجسہم، تو ان کی ناپاکی میں اور اضافہ کرتی ہے ناپاکی، وماتوا وهم کافرون، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہتے ہیں۔ چونکہ سورۃ توبہ کے اندر منافقین کے بہت سارے پول کھولے گئے تھے، اسی لیے سورۃ کاشفہ بھی تھی، فاتحہ بھی تھی، تو یہاں منافقوں کی ایک اور کیفیت بتائی کہ اتنی خوبصورت باتیں سننے اور پڑھنے کے بعد بھی خراب دل والوں کو ان آیتوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں ایمان افروز باتیں ہوئی نا، ایمان کو بڑھانے والی۔ اب وہ لوگ جو پیچھے سے اتنی صورتیں پڑھنے کے باوجود بھی ابھی بھی اپنے آپ کو ڈاماڈول محسوس کر رہے تھے، وہ سنبھل جاتے ہیں کہ نہیں، بس اب ہم نے فیصلہ کر لیا، بہت ہو گیا، اب 10 پارے پورے ہو گئے، بس اب ایک سنجیدگی آنی چاہیے، اب ایک مزاج میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں ان کو اتنا پڑھنا فائدہ ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ کلام ایک ہی ہے، کچھ لوگوں کے دلوں کی گھبراہٹ کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وہ قرآن سن کے پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں، کوئی فائدہ ہوتا ہے بھلا تمہیں سننے کا؟ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ آپس میں کیا پوچھتے تھے، ایکم زادت ہو حاضی ہی مانا، کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی تمہیں اچھا لگتا ہے بھلا یہ انداز؟ کوئی کلاس میں آنے کا کوئی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے؟ ذرا معلوم نہیں، ساری باتیں تو پہلے ہی پتہ ہیں۔ یعنی وہ ایسی اکھڑی اکھڑی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی سننا چاہتے ہیں تاکہ لوگ کہیں، اچھا ہاں واقعی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، بس اتنا وقت لگایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہے کہ دیکھو 10 پارے پورے ہو گئے، ابھی بڑی آندھیاں چلیں گی، کئی جگہ پاؤں اکھڑیں گے کہ چلو چھوڑو اب اور نہیں سیکھتے، کیا فائدہ ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دم اللہ کے نبی کی مجلسوں میں پہنچا دیتے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی دو طرح کے ہوتے تھے، ایک وہ تھے جن کو ایمان بڑھا دیا جاتا تھا ان آیتوں کے سننے اور سنانے سے، اور وہ خوشیاں پاتے تھے۔ کیا آپ بھی اپنے آپ کو خوش پاتے ہیں ان آیتوں کو سن کے؟ کیا ایمان اس کے اندر اضافے ہوتے ہیں، یا پھر بوجھ لگتا ہے کہ یہ تو ساری آج ہماری باتیں تھی، ہماری باتیں کر دی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، پھر ان کی بیماری اور بڑھتی ہے، ناپاکی اور بڑھتی ہے۔ میں جب ان دو آیتوں کو پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی۔ اب دیکھیے کہ آسمان سے بارش برستی ہے نا، پیور ہوتی ہے، صاف ستھرا پانی ہوتا ہے بارش کا۔ اب وہ بارش किसी सूखी जमीन पे पड़ती है या कोई ऐसे फूलों की क्यारी के ऊपर पड़ती है, जो ही पानी पड़ता है तो वहां से खुशबूएं उभरती हैं। कभी आपने कभी बरसात के मौसम में कहीं गुजरे हों और देखें तो ऐसी जगह जहां कोई खुशबू या पौधे या फल फूल होते हैं, बारिश के बाद वहां से खुशबूएं उठती हैं। और इसी तरह कभी आप कूड़े के ढेर के पास से गुजरे हों जो सूख चुका था, कोई बू नहीं थी, जूं ही बारिश हुई उसके इर्द गिर्द के इलाकों में ताफुन फैल गया। बारिश ही क्या, लेकिन कूड़े के ढेर में पड़ा तो अंदर से गंदगी और सराड़ निकली, फूलों की क्यारी पे गया तो अंदर से खुशबू उभरी। इसी तरह दिलों का हाल है, कुछ दिल फूलों की क्यारियां होते हैं, सूखे थे, खुशबू नहीं थी, कुरान की वही की बारिश पड़ी, खुशबू आने लगी, सिबगत अल्लाह का रंग उभरने लगा, लोगों के लिए खैर का नमूना बने। लेकिन जिन दिलों में बुग़्ज़, हसद और ऐसी चीजें होती हैं, वो उस कुरान को सुन के भी फिर गंदे ही लफ्ज़ बोलते हैं। अपने आप को चेक करें हम, कि हमारा दिल कूड़े का ढेर है या फूलों की क्यारी है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, अवला यरून अन्नहुम, क्या वो भला नहीं देखते, नजर नहीं आता उनको, शौर से नहीं देखते क्या, कि अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन, कि वो आजमाए जाते हैं हर साल, मर्रतन औ मर्रतैन, एक दफा या दो बार, सुम्मा ला यतूबून, फिर भी वो तौबा नहीं करते, वला हुम यज़्ज़क्करून, और ना वो नसीहत पाते हैं, इबरत नहीं लेते। बल्कि क्या होता है, वह इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन, और जब कोई सूरत नाजिल होती है, नजर बाज़ुहुम इला बाद, तो बाज मुनाफिक दूसरों को देखते हैं, इशारे करते हैं आंखों ही आंखों में, और क्या कहते हैं, हल यराकुम मिन अहदिन, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं है, कोई मुसलमान देख तो नहीं रहा तुम्हें, और ऐसी बातें करते ही सुमन सरफू, चुपके से वहां से खिसक जाते हैं। उनका उठना छोटा नहीं है, सरफ अल्लाह कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया, हक बात से फिर गए, क्यों, बिअन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, क्योंकि ये वो कौम है जो समझती नहीं, तफक्को नहीं हासिल करते। यहां फिर कुछ लोगों का पोल खुला, अल्लाह ताला कह रहे हैं कोई साल ऐसा नहीं गुजरता कि साल में एक या दो बार इन मुनाफिकों की रुसवाई ना हो, कभी इनकी कोई साजिश पकड़ी जाती, कभी इनका कोई राज फाश हो जाता, कभी कोई जंग होती जो इनके ईमान के लिए आजमाइश बन जाती, कभी खुद ही ऐसी बातें करते कि अपनी बातों की वजह से रुसवा हो जाते। हर मौका एक नसीहत का मौका बन सकता था, लेकिन चूंकि इनके दिल शको शुबात में मुब्तला थे, तो ऐसे लोगों ने ऐसी चीजों से फायदा उठाने की बजाय और अपने आप को हिदायत से दूर रखा। और जब अल्लाह के नबी के ऊपर इनके कुछ वाकयात, इनसे मुतल्लिक कोई आयतें नाजिल होती थी ना, तो आंखों ही आंखों में देख रहे होते थे, ये हमारी बातें हो रही हैं। अब देखिए कि इंसान का दिल गवाह होता है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, इंसान खुद अपने नफ्स को देख रहा होता है, वलौ अल्का माजीरा, चाहे कितने उजर तराश ले, कितने पर्दे डाल दे, तो इनको पता होता था ये हमारी होती हैं, हम ये काम कर, हमारे इस बारे में ये बातों का जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो ऐसी ईमान वाली महफिलों से भी गंदे दिल के साथ उठते हैं, वो ईमान जिसमें नूर आ सकता था वहां अंधेरे लेके उठते हैं। जैसे बीमार मेदे वाले को अच्छा खाना खिला दिया जाए तो वो खाना और ज्यादा उसको नुकसान देता है, इसी तरह ये कुरान की महफिलों से ऐसी बातें करते हुए उठ जाते हैं और कहते हैं बस अब हमें और नहीं बैठना इन महफिलों में। कैसा, यानी हिला देने वाला एक नजरिया है ना, ये जब मैं लफ्ज पढ़ रही थी ना कि सरफ अल्लाह कुलूबहुम, तो बाज दफा इंसान सिर्फ उठने का इरादा कर रहा होता है, फिरने का इरादा कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको वो दीन से फिरने का जरिया बना देते हैं। तो इस इंजाम से हमने पनाह मांगनी है कि कोई ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की ये बात हमारे ऊपर आ जाए। फिर आप देखिए कि कुरान शिफा थी, इससे इनकी बीमारियों को सेहत मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने लिए गलत फैसले करवा लिए। फिर ये जो लफ्ज है ना कि अन्नहुम युफ्तनूना, आजमाए जाने, तो अगर इसको हम आज के तनाजर में भी देखें तो हर साल या साल के 2 साल के बाद कोई ना कोई ऐसा आलमी मैदान में कोई ऐसा सानहा होता है, कहीं जलजला आ जाता है। अभी उसकी लोग बातें सुन रहे होते हैं, खबरें सुनते सुनाते, आर्टिकल्स लिखते, उसकी एड जमा कर रहे होते हैं, दुनिया के किसी और खत्ते में आता है तो अल्लाह ताला इबरत की निगाह खुलाने के लिए कहते हैं, देखो नहीं गौर करते, ये क्यों आजमाइशें आ रही हैं, ये आसमानों से आफात क्यों आ रही हैं, ये कहत क्यों आ रहा है, ये बिजलियां क्यों गिर रही हैं, ये जलजले क्यों आ रहे हैं, ये तुम्हारी आजमाइशें हैं ताकि तुम बच जाओ। लेकिन बचने की बजाय वो कनखियों में इशारे करके वहां से उठ जाते हैं और आखिर में फिर अल्लाह ताला अपने नबी की बात करते हैं, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। लोगो तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आ गया, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो इसे गिरां गुजरती है और वो तुम्हारी फलाह का हरीस है, मोमिनों पर निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी फाइन तवल्लो, फिर भी अगर लोग एराज करें तो फकुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, तो कह दीजिए कि मेरा रब मुझे काफी है क्योंकि इसके सिवा कोई इलाह नहीं, अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, इसी पर मैं तवक्कुल करता हूं और वो रब्बे अर्शे अजीम है। सूरत खत्म होती है किस अंदाज से, आपने देखा होगा कि सूरत शुरू हुई थी बरातुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बेज़ियारी बेनियाज है, कोई मामला नहीं, और आखिर में फिर वही बात आ गई, नहीं मानते ना मानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो मुसलमानों के लिए इस्लाम के लिए तड़प थी उसका जिक्र कर दिया, तुम्हें नहीं अच्छी लगती बातें ना मानो, लेकिन मेरा नबी वो था कि जो तुम्हारी इस्लाह का हरीस था, उसको तड़प ही एक थी कि तुम आग से बच जाओ। लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आ गया एक रसूल तुम्हारे ही नफ्सों में से आया है, इंसान है, कुरैशी है, अरब है, तुम्हारी जैसी जुबान बोलता है, तुम्हारे जैसा इंसान है, तुम्हें उसकी मोहब्बत नहीं नजर आती। अजीजुन अलैहि वानितुम, बड़ी बोझल है उस पर यह चीज जो तुम्हें तकलीफ में पहुंचाए, अनता ऐसी चीज जिससे इंसान को दुनिया और आखरत की तकलीफ हो। असल में ये दाई के लिए यानी दावत देने वाले के दिल में दावत देने वालों के लिए जो तड़प है उसका जिक्र है। इसको कितनी तकलीफ होती है तुम्हें गुनाहों में देखते, जब तुम गलत काम करते हो तो इसके अंदर कितनी तड़प है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे बारे में हिर्स है, क्या कि अल्लाह ताला तुम्हें आखरत के अजाबों से बचा दे। जो मुनाफिक थे ना उनको आपके दीन का काम करना पसंद नहीं था, ना पसंद था, कहते थे इसकी वजह से मुश्किल में पड़ गए, एक तो इनके दरसों से हम थक गए, हर मौके पे हर बात इनको हमारे खिलाफ ही करनी होती है, चैन से नहीं पड़ते, किसी मजलिस में उनको देख लेते हैं तो कहते हैं बस जी यहां भी आ गए, लो अब यहां भी नसीहत सुनेंगे, अब यहां भी इनकी बातें करेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं लोगों को कहने दो, ये नबी तुम पे मुसीबतों के दरवाजे नहीं खोल रहा, तुम्हारी आने वाली मुसीबतों से तुम्हें दूर कर रहा है, इसको पहले फिक्र लगी हुई है कि तुम्हारे साथ कल होने वाला क्या है। रऊफुन रहीम, राफतुन से रऊफ, बाप की तरह शफकत, ऐसी रहमत और मोहब्बत जो किसी की तकलीफ पर जोश में आती है। तुम क्यों इसके बारे में ऐसा सोचते हो? आप कहेंगे कि अल्लाह के नबी के बारे में लोग ऐसा सोचते होंगे, जी दिलों में रोक होता है जब अपनी बीमारियां नहीं छोड़ना चाहते ना, जैसे बच्चा डॉक्टर के पास जाता है फिर भागता है, नहीं इंजेक्शन लगेगा गोली खाएगा, इसी तरह कुछ लोग बचगाना सोच रखते हैं, वो ये सोचते हैं कि अच्छा अब इनकी बातों के बाद फिर अमल करना पड़ेगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, बोझल पड़ेगी, छोड़ दो। अल्लाह ताला कहते हैं आप गम ना करें, आपने अपना काम कर दिया, आपने लोगों को आसान दीन दिया, लेकिन अब इनको नहीं मानना तो फिर फाइन तवल्लो, जाने दो, फिर इनको ना रोको। अब देखिए कि माँ भी एक खास हद तक बच्चे के साथ मेहनत करती है, खाना खिलाती है, उसके मुंह में चम्मच भर भर के डालती है, और जब बच्चा उगलने लगे तो माँ कहती है अच्छा जाते हो तो फिर जाओ, मैं नहीं अब पीछे बढ़ रही। इसी तरह कोई कितना ही मुखलिस हो, कितनी मोहब्बत रखता हो, कितनी तड़प रखता हो इस बात की कि लोगों को दीन की बात समझ आ जाए, जब लोगों को नहीं मानना तो वो नहीं मानते, फिर इसके लिए हुक्म है कि फिर छोड़ दीजिए, फिर जाने दें इनको इनके हाल पे, हस्बी अल्लाह, मेरा रब मुझे काफी है। तकलीफ तो होती है ना लोगों को दीन को छोड़ता देख के, दीन से कटता देख के तकलीफ तो होती है, तो कहा फिर हस्बी अल्लाह पढ़ो। ये आखिरी एक आयत इतनी खूबसूरत आयत है कि सुबह शाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको 7 बार पढ़ते थे, और रिवायत में आता है कि जो सुबह और शाम इसको 7 बार पढ़ दे, अल्लाह ताला उसके दुनिया और आखरत के सारे गम हम वो अपने जिम्मे ले लेते, उसके काम अल्लाह के जिम्मे आ जाते हैं, सुभान अल्लाह। और यही चीजें हैं जो इंसान को फिर अल्लाह के ऊपर मजीद तवक्कुल और भरोसा करने के काबिल करती हैं, लेकिन बात है शऊर के साथ पढ़ने की, समझने की। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई और नहीं, अलैहि तवक्कल तू, एक एक लफ्ज ऐसे लगता है कि बंदे की रब के साथ कन्वर्सेशन हो रही है। आपकी सारी खैरख्वाहियों के बावजूद अगर ये ना माने तो छोड़ दें, इनका गम ना करें बल्कि रब से ताल्लुक को जोड़ लें और मजबूत कर लें। बस दफा अच्छे जज्बात की बेकदरी की जाती है, ना कदरी करते हैं लोग, तो ऐसे तमाम लोगों को पैगाम है कि ऐसे वक्तों में रब का दामन थाम लो, जब लोग तुम्हारी कदर ना करें तो रब की तरफ आ जाओ। और अल्लाह के रास्ते में बुलाने वालों को तो लोग बड़ा ही तंग करते हैं और नाकदरियां करते हैं, तो कहा छोड़ो। फिर यहां देखिए अल्लाह ताला की एक सिफत आई, वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, रब्बी नहीं कहा बल्कि रब अर्श अजीम कहा, क्यों? कि उसकी वुसअतों का अंदाजा कर ले, कि जिसके दीन को छोड़ के भाग रहे हो, जिसके कब्जे से भागना चाहते हो, वो इतना बड़ा है कि अर्श का मालिक है, तुम्हें कहां छोड़ेगा। और ये अबू दाऊद की रिवायत है कि सुबह शाम 7 मरतबा अगर आप इन आयतों को पढ़ते हैं, इस एक आयत को, तो दुनिया और आखिरत के कामों के लिए काफी होगा। हजरत उमर फारूक कहा करते थे कि अगर ये 3 आयतें होती तो मैं इसको एक अलग सूरत का नाम देता, ये इतनी जामे आयत है। फकुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अपने दिल का जायजा लिया करें, क्या ये लफ्ज दिल के अंदर जा रहे हैं, अंदर घुसते हैं, क्या मेरे दिल की ये कैफियत है? क्योंकि जिसको अल्लाह काफी हो जाता है फिर उसको दूसरों की जरूरत नहीं रहती। हम कहते ये हैं और सारा दिन शिकवे दूसरों से करते हैं, कहते ये हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और माबूद दूसरे दिलों में बिठाए हैं, कहते ये हैं कि तवक्कुल अल्लाह पे है और माश की उम्मीदें औलादों से लगाई हुई हैं, इनको पढ़ा लो फिर खूब खाएंगे, बुढ़ापे में हमारे ये काम आएंगे। सूरह तौबा तो खत्म हो गई, लेकिन न जाने हमने तौबा की कि नहीं की। ये किताब थी जिसने लोगों को पत्थर से हीरा बनाया था, न जाने हम हीरे बने कि नहीं बने। अपने आप को चेक किया करें, मेरे अंदर अमल आया कि नहीं आया, मेरे अंदर ईमान की हरारत पैदा हुई कि न हुई। ये जो हस्बी अल्लाह का लफ्ज है ना, इस पे खास तौर पे तवज्जो करने की जरूरत है ना। मैं जब इस लफ्ज को सुनती या पढ़ती या बोलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अपनी जेवरों की भरी हुई पोटली आप लेके फिर रहे थे कहाँ जाऊं। अब शादियों में अक्सर औरतों ने पकड़ी होती हैं कीमती चीजें या कोई माल है कुछ है, फिर अब वो इंजॉय नहीं कर पा रहे, फिर माँ को देखा तो माँ को कहते हैं ये आप संभाले, मैं जा रही हूँ खेलने, इंजॉय करें, या अपना बच्चा पकड़ के माँ के हाथ में दिया, फिर बंदा भूल ही जाता है कि किसको दिया था किसको लिया था। उस वक्त जो एक असूदगी के साथ होता ना, माँ ने पकड़ लिया अब खैर है आप छोड़ो, अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। फिर जब उसके हाथ में मामले आते हैं तो उसके बाद दिल मुतमईन होता है, इत्मीनान, आई डोंट केयर। और मेरा इतना ईमान है इन आयतों पे, अल्लाह का शुक्र है, मैं कह सकती हूँ कि जब से मैंने अपनी जिंदगी में इन आयतों को अपनी सुबह शाम में शामिल किया, यकीन करें दुनिया तो दुनिया, आखिरत का गम भी मिट जाता है, मरने का गम खत्म, कब्र का खत्म, हशर का खत्म, जो होगा हस्बी अल्लाह, मेरा रब काफी है, देखना सही हो जाएगा। यानी फिर वो खौफ नहीं आता, फिर वो घबराहट नहीं आने लगती अपने अंदर कि जैसे एक वहशत या एक डिप्रेशन या फिकर, बल्कि मौत भी इंतजार लग जाता है। जब मौत का सोचो तो ऐसे लगता है अच्छा यहाँ इतने, हाँ मरे हुए याद है, अच्छा हाँ फुला मामू फुला नाना फुला फुला, इतनी देर हुई उनको नहीं मिले हुए, चले फिर उनको मिलेंगे। यानी मैंने फील किया है कि यकीन से पढ़े तो फिर वाकई इंसान हर गम से आजाद हो जाता है। तो अल्लाह ताला सबको बेगम कर दे।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين